रहे थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन मित्रों का जो अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करके अपनी गवाहियां हम तक लिखकर पहुंचाते हैं, फोन के माध्यम से, ईमेल के द्वारा से और एसएमएस के द्वारा से। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको भी इस वचन के द्वारा से, अध्ययन के द्वारा से आशीष प्राप्त हो रही है। कृपया आप भी हमें लिख करके भेजें ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि धर्मशास्त्र में प्रभु यीशु 3 बार रोया था, अर्थात यह जानकारी हमें धर्मशास्त्र के द्वारा से प्राप्त होता है, परंतु मेरा विचार यह है कि वह इससे भी अधिक रोया था। मेरे प्रियो, धर्मशास्त्र में यीशु पहली बार लाजर की कब्र पर रोया था क्योंकि उससे उसकी बहनों का दुख सहा नहीं गया था। वह हमारे दुख में हमारे साथ बराबर का भागी होता है क्योंकि वह मनुष्य रहा है। दूसरी बार वह यरूशलेम के लिए रोया था, वह आज भी विश्वासियों के लिए रोता है। और तीसरी बार वह गतसमनी में रोया था क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि वह क्रूस पर मरे, अतः वह उसे वहीं मार देना चाहता था। मेरे प्रियो, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, लेकिन इससे पहले हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। यद्यपि कि हम लोग एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं, परंतु हम धन्यवाद देते हैं रेडियो के माध्यम से आपके वचन को हम सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। हाँ प्रभु, हम विनती करते हैं कि हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जहाँ कहीं भी आपके वचन को सुनने के लिए श्रोता भाई बहन बैठे हैं, आपके वचन को सुनकर समझ सकें, सीख सकें और अपने जीवन में ग्रहण करने पाएं। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय अपने जीवन में निराश हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं या बीमार की अवस्था में हैं। पिताजी, आप उन पर कृपा दृष्टि करें, उन्हें छुए और चंगाई दें, शांति और आनंद प्रदान करें। आज के वचन से आप उन्हें तसल्ली दें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और सहायता करने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम सब इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने यह भी जाना कि यीशु 3 बार रोया था, जिसकी जानकारी हमें धर्मशास्त्र के द्वारा से प्राप्त होती है। हम आगे भी देखते हैं कि उसकी सुनी गई। जी हाँ, यदि हम कहें कि वह क्रूस की मृत्यु के लिए विनती कर रहा था कि वह कटोरा उससे टल जाए, तो उसकी विनती सुनी नहीं गई, परंतु इब्रानियों का लेखक कहता है कि उसकी विनती सुनी गई। इसका अर्थ यह है कि गतसमनी में न मरने की उसकी विनती सुनी गई थी। मेरे प्रियो, भविष्यवाणी से स्पष्ट था कि वह क्रूस की मृत्यु मरेगा। भजन संहिता 22 से अधिक अच्छा क्रूस का विवरण कहीं और नहीं है। क्रूस एक वेदी था जिस पर परमेश्वर के पुत्र ने अपना लहू बहाया था कि आपके और मेरे पापों का दंड चुकाया जाए। लय व्यवस्था की पुस्तक 17 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। मेरे मित्रों, पुराने नियम में पशुओं का लहू पापों को केवल ढांकता था, परंतु प्रभु यीशु का लहू तुम्हारे प्राणों के पश्चाताप के लिए है। प्रभु यीशु ने क्रूस की वेदी पर लहू बहाया था। उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 14 पद में निकोदिमुस से कहा था कि जिस प्रकार मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर लटकाया था, उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र का ऊंचे पर लटकाया जाना आवश्यक है। मेरे विचार में उसकी प्रार्थना यही थी कि वह गतसमनी में न मरे। यह उसकी मानवीय प्रार्थना थी, क्योंकि वह रो रहा था और उसका लहू पसीने की बूंद बनकर टपक रहा था। क्रूस के निकट वह मृत्यु के मुंह में जा रहा था, अतः उसने प्रार्थना की कि वह मृत्यु से बचकर क्रूस तक पहुंच जाए। और लिखा है कि भक्ति अर्थात भय के कारण उसकी सुनी गई। मेरे प्रियो, हम देख चुके हैं कि भय सदैव बुरा नहीं होता है। कुछ बातों में निर्भीक होना भी असामान्य है। मेरे विचार में हमारी कलीसियाओं में कुछ और भय होना चाहिए। हम में परमेश्वर का भय होना अनिवार्य है, क्योंकि वह बुद्धि का मूल है। प्रभु यीशु भयभीत था। आइए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसके 8 और 9 पद। यहाँ पर लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। लिखा है और सिद्ध बनकर अर्थात परिपूर्णता प्राप्त करके। तब हम देखते हैं सदा काल के उद्धार, उसका उद्धार अनंत है। यदि आपका उद्धार कल चला जाए तो वह अनंत नहीं है, वह कुछ और है। परंतु प्रभु यीशु द्वारा दिया गया उद्धार अनंत होता है। लिखा है सब आज्ञा मानने वालों के लिए। आज्ञा मानना क्या है? यीशु से एक प्रश्न पूछा गया था यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 28 पद में, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें। पद 29 में यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहते हैं तो प्रभु यीशु में विश्वास करें। वह यही कहता है। आगे हम पढ़ते हैं, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। मेरे मित्रों, मैं इस वाक्य को समझ नहीं पाता हूँ। परमेश्वर के पुत्र को दुख उठाकर आज्ञा मानना क्यों सीखना था? वह तो पहले से ही सिद्ध था, तो उसे सिद्ध होने की क्या आवश्यकता थी? यह एक ऐसा भेद है जिसकी गहराई मैं नहीं नाप सकता। मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि परमेश्वर को प्रभु यीशु के मृत्यु से कुछ मिला था। जी हाँ, उसकी मृत्यु से स्वर्ग अधिक उत्तम हो गया था। उसने स्वर्ग में कुछ जोड़ा जहाँ सब कुछ सिद्ध है और परमेश्वर के पुत्र ने कुछ सीखा। मनुष्यों की परिभाषाएं मुझे संतोष प्रदान नहीं करती है। मुझे केवल यही पता है कि यह एक भेद की बात है। प्रभु यीशु ने मानव रूप धारण किया और मानव रूप में वह आज्ञाकारी रहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 39 पद में प्रभु यीशु कहता है कि वह पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आया था। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं मरूंगा तो मैं आज्ञा मानकर नहीं मरूंगा। यदि प्रभु ना आए, मैं मरना नहीं चाहता। जब लोग मरने की बात करते हैं तो मेरी समझ में यह अस्वाभाविक है। मैं तो जब तक संभव हो इस पृथ्वी पर रहना चाहता हूँ। जब मुझे किसी प्रकार की बीमारी होती है तब बहुत से लोगों ने मुझे पत्र लिखकर कहा कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको जीवन दान दे। मैं धन्यवाद से भरा हूँ कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है। परंतु एक महिला ने लिखा, मैं आपके लिए जीवन दान की प्रार्थना नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप जाने की तैयारी में हैं। इसलिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि परमेश्वर आपको घर ले जाए। मैंने उससे पत्र लिखा, आप कृपया करके यह काम प्रभु के हाथ में छोड़ दें, यह उसके और मेरे बीच की बात है। मैं यहीं रहना चाहता हूँ। अतः यदि आप अपनी प्रार्थना में क्षमा मांगकर बदलाव लाएं तो अच्छा होगा और परमेश्वर से कहें कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। अतः इब्रानियों की पत्री का लेखक जब कहता है कि प्रभु यीशु ने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी, तो मैं इसे समझ नहीं पाता हूँ। मैं केवल यही समझ पाता हूँ कि यह एक भेद की बात है और हमारे प्रभु ने भी कुछ सीखा है। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, और उससे परमेश्वर की ओर से मलकीसीदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। अब लेखक प्रभु यीशु के याजक होने के बारे में कहेगा। पुराने नियम में मलकीसीदक प्रभु यीशु का प्रतीक होने के लिए था। ऊंचा सुनने के खतरे की अब हम चेतावनी देखते हैं। यह खतरे की तीसरी चेतावनी है जो लाल बत्ती के समान चमकती है। अब वह हमें मुख्य मार्ग पर लाना चाहता है, परंतु हमें इससे पहले दोनों ओर देखना है। यह ऊंचा सुनने का खतरा है। वह शेष अध्याय को इसी विषय में समर्पित करता है। अगले अध्याय में वह एक और खतरे की चेतावनी देने के बाद मलकीसीदक की रीति पर प्रभु यीशु के महायाजक होने की चर्चा करता है। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। लेखक के पास कहने के लिए अभी बहुत बातें हैं, इसलिए कहता है जिनका समझना भी कठिन है। समझना कठिन क्यों है? इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। लेखक तो स्पष्ट समझा रहा था, परंतु वे समझ नहीं पा रहे थे। क्या आपने कभी अपनी पत्नी से या अपने पति से कहा है, आज के संदेश में पादरी साहब अच्छी तरह से समझा नहीं पा रहे थे, आज प्रचार में कुछ मजा नहीं आया? क्या आपने कभी सोचा है कि समस्या आपके साथ है? क्या आप ऊंचा सुनते हैं? समस्या बोलने की नहीं, सुनने की है। मेरे मित्रों, आज विश्वासियों की सबसे बड़ी समस्या सुनने की है। मलकीसीदक की रीति पर प्रभु यीशु का महायाजक होना एक कठिन विषय है, परंतु लेखक सीधा और स्पष्ट कहेगा, इस विषय को समझने के लिए आत्मिक समझ की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि पढ़ने और सुनने वाले आत्मिक सतर्कता को रखें और परमेश्वर के वचन को जाने तथा उसके निकट बने रहें। इब्रानी के विश्वासियों में सांसारिक बुद्धि तो थी, परंतु आत्मिक बुद्धि की कमी थी। उन्हें सिखाना कठिन इसलिए था कि वे समझ नहीं पाते थे। वे अभी शिशु अवस्था में ही थे, जैसे आज के पवित्र जनों में से अनेक हैं। उन्हें प्रचारक से भी बच्चों का सा व्यवहार करने की अपेक्षा थी। वे किसी भी कठिन विषय को सुनना नहीं चाहते थे, जैसा कि आज हम में से कई लोग करते हैं। यही कारण है कि कई प्रचारक प्रचार मंच से वचन की हत्या करके भी बच रहे हैं। वे वचन के स्थान पर अपने विचार को सुना रहे हैं और कलीसिया को ऐसी बच्चों वाली बातें अच्छी लगती है। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको उन वचनों को सुनने की आवश्यकता है जिसे परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय के 12 पद में लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। लिखा है, कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। आदि शिक्षा के लिए यूनानी शब्द का अर्थ वास्तव में अणु है, अर्थात मूल तत्व है। इन्हें हम मसीही जीवन का क ख ग कहते हैं। उन्हें तो वास्तव में शिक्षक और पूर्ण विकसित होना था, परंतु उन्हें तो अब भी आवश्यकता थी कि कोई उन्हें गोद में उठाकर हवा निकाले या उन्हें दूध पिलाए, वचन की शिक्षा दे। मेरे प्रियो, एक दिन रविवारीय आराधना के बाद जब मैं कलीसिया से हाथ मिला रहा था, तब एक व्यक्ति मेरे पास आकर कहने लगा, आपको मुझसे क्या बुराई है? मैंने कहा कि मुझे कोई बुराई नहीं है। तो उसने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, कल आप मेरे पास से निकल गए और मुझसे बात भी नहीं की। यह बच्चों वाली बात नहीं तो क्या है? मैंने उसे देखा भी नहीं था। ऐसा कहना महामूर्खता है। किसी और ने शिकायत की, आज गायक ने गाना नहीं गाया, हम तो उसी को सुनने आए थे। ओह, ये शिशु अपना झुनझुना और दूध की बोतल ही मांग रहे थे। मेरे प्रियो, हम में से कई लोग आज हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं और परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, नहीं पढ़ते, और यही कारण है कि आज हम में से कई लोग प्रार्थना भी नहीं कर पाते हैं। इन इब्रानी पाठकों से लेखक कहता है, तुम्हें मांस की अपेक्षा अभी तक दूध चाहिए। तुम अभी तक बड़े नहीं हुए हो, शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक रीति से। तुम पूर्ण विकसित नहीं हो। बच्चा मांस नहीं खा सकता, परंतु बड़ा व्यक्ति दूध का आनंद लेता है। मैं मानता हूं कि आज बहुत से पवित्र जनों को बच्चों वाली बातें सुनना अच्छा लगता है। यह एक त्रासदी है कि उन्हें यह सुनना पड़ता है, परंतु वे सुनते हैं। इब्रानियों की पत्री 5:13 में लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। वह परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं रखता है। मैं आपका पांव कुचलना नहीं चाहता हूं मेरे मित्रों, परंतु मैं आपका सहायक बनने की इच्छा रखता हूं। आप परमेश्वर के वचन से हटकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप कलीसिया में कितने भी सक्रिय सदस्य क्यों ना हो, आप कलीसिया में पदाधिकारी होंगे, आप कलीसिया की हर एक समिति के सदस्य होंगे, आप एक जाने माने पादरी के बेटे होंगे, या आप एक सहयोगी पादरी होंगे। आप क्या हैं, मैं इसकी चिंता नहीं करता। यदि आप परमेश्वर के वचन का चिंतन नहीं करते और उसे अपनाना नहीं जानते हैं, तो आप शिशु ही हैं। जी हाँ, एक शिशु का सा मसीही जीवन रखकर कलीसिया का कोई पदभार संभालना एक बहुत बड़ी त्रासदी है। आपको पूर्ण विकसित होना है, अर्थात वचन को सीखना, जानना और मानना है। यह एक दुखद बात है कि विश्वासी कलीसिया के सदस्य हैं और वर्षों पूर्व उद्धार पा चुके हैं, परंतु वे अब तक क ख ग ही कहते रहते हैं। उनके पास बच्चों की सी बातें करने की अपेक्षा और कुछ भी नहीं है कि कलीसिया के विकास में योगदान दें। वे बस इतना ही चाहते हैं कि प्रचारक समय समय पर उनके पेट में दूध के साथ फंसी हवा निकालता रहे। क्या आज आप इसी प्रकार का मसीही जीवन जी रहे हैं? क्या आपको यही जीवन पसंद है, या आप चाहते हैं कि आपके लोग और भी गंभीर होकर उन बातों को सीखें? इब्रानियों के पत्री 5:14 में लिखा है, पर अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 1 और 2 पद में पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। तब हम आगे पढ़ते हैं, पहला पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसके 1 और 2 पद में पत्रस भी कहता है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु के दास पौलुस और पत्रस इस बात का स्मरण करा रहे हैं कि अभी भी लोग दूध ही पी रहे हैं, अर्थात परमेश्वर के वचन के इन क ख ग घ को ही सीख रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आप उससे बढ़ करके आगे आएं? और न केवल क ख ग घ, परंतु आप परमेश्वर के वचन को पढ़ सकें, सीख सकें और अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में उसको ला सकें। आज परमेश्वर का दास मुझसे और आपसे यही कहता है कि हम सिर्फ दूध ही नहीं परंतु मांस भी खाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम परमेश्वर के वचन को और अधिकाई से पढ़ें और उसका अनुसरण करें, उसमें हम परिपक्व और सिद्ध बनें। मेरे प्रियो, मैं आपके जीवन को नहीं जानता कि आप किस कलीसिया से हैं और किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, परंतु मैं आज आपसे यही कहूंगा कि आप दूध पीना छोड़ दें और परमेश्वर के वचन की उन गंभीर बातों को अपने जीवन में सीखें, उस उत्तरदायित्व को समझ लें और अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए आशीष के कारण बन जाएं। यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन की बातों को समझ करके उसे अवश्य ही अपने जीवन में अपनाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यीशु से डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी, यीशु से डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी, यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो, यीशु का वादा सच्चा है,
सच्चा है,
जो भी वो कहता है होता है,
होता है,
यीशु यहोवा रफा है, यीशु खुदा का है बेटा,
पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो,
पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो।